नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आज अम्मान में आयोजित भारत जॉर्डन व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 पेश किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज तड़के कई बसों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। एशिया क्रिकेट परिषद अंडर 19 एशिया कप में भारत ने मलेशिया को 409 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने आज अम्मान में आयोजित भारत जॉर्डन व्यापार मंच को संयुक्त रूप से संबोधित किया। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नए आयाम देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें दोनों पक्षों के प्रमुख व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किंग अब्दुल्ला ने व्यापार मंच को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी और संयुक्त निवेश पर चर्चा करने का अवसर बताया। किंग अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आज की चर्चाएं जॉर्डन और भारत के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग को बढ़ाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में भारत ने अपार विकास किया है और हम अपनी आर्थिक साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि जॉर्डन खाद्य उर्वरक फार्मास्यूटिकल्स वस्त्र सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ऊर्जा खनन पर्यटन उन्नत विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सहित प्रमुख क्षेत्रों में परिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन की रणनीतिक स्थिति और मुक्त व्यापार समझौतों तथा भारत की आर्थिक शक्ति और उन्नत उद्योगों के साथ हमारे पास दक्षिण एशिया को मध्य पूर्व अफ्रीका और यूरोप से जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा बनने की क्षमता है। उन्होंने भारतीय व्यवसायों को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के माध्यम से एकीकृत लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति अद्वितीय समर्पण ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता और देशभक्ति देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दृढ़ संकल्प और आधुनिक युद्ध तकनीकों के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया है जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों की वीरता ने पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक विजय दिलाई जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्र बांग्लादेश का जन्म हुआ और क्षेत्र के भू राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया। श्री राधाकृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध ने न्याय और स्वतंत्रता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अद्वितीय व्यवसायिकता को प्रदर्शित किया। वीर सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा ने राष्ट्र की रक्षा की और भारत के इतिहास में गौरव का एक क्षण अंकित किया। उन्होंने कहा कि यह दिन उनकी वीरता को सलाम और उनके अद्वितीय साहस की याद दिलाता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के कार्यान्वयन और वैश्विक दक्षिण के लिए काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह बयान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात के दौरान दिया गया। दोनों नेताओं ने कल अबुधाबी में 16वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक और भारत यूएई रणनीतिक वार्ता के पांचवें दौर की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठकों ने द्वीपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। इनमें व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, विकास, साझेदारी, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा और जन जन संबंधों जैसे मुद्दे शामिल थे। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की गहराई और व्यापकता पर संतोष व्यक्त किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि की रक्षा और उसे बढ़ावा देने में साझा हित की पुष्टि की। इसमें कहा गया कि यूएई ने अगले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इंपैक्ट समिट और 2026 में ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया। इस दीर्घा में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित है। इसका उद्देश्य अंगतुकों को उन राष्ट्रीय नायकों के बारे में शिक्षित करना है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में अदम्य संकल्प और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। यह उन वीर योद्धाओं की स्मृति को सम्मानित करने की भी एक पहल है जिन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आज तड़के कई बसों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा मथुरा के बलदेव इलाके में यमुना एक्सप्रेस पर हुआ जहां बसों की टक्कर के कारण वाहनों में भीषण आग लग गई। घने कोहरे के कारण हुए इस हादसे के बाद स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई जब ज्यादातर यात्री सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने सभी एजेंसियों और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का मसौदा आज प्रकाशित कर दिया गया। SIR के पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 7,66,37,529 मतदाताओं को शामिल किया गया है। इनमें से 7,08,16,616 मतदाताओं के जनगणना प्राप्तों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 92.4% जनगणना प्राप्तों का डिजिटलीकरण हो चुका है। SIR प्रक्रिया में 58 लाख से अधिक अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 2002 की मतदाता सूची के 31,38,374 मतदाताओं को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। इन मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। सुनवाई आज से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। जिन लोगों के नाम मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं है वे फॉर्म 6 भरकर संबंधित BLO को जमा कर सकते हैं या voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। प्रारूप सूची voters.eci.gov.in वेबसाइट, ECINET ऐप, पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग और CEO की वेबसाइट, BDO, SDO, जिलाधिकारी या स्थानीय सरकारी कार्यालय और जिला वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर 2,13,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जबकि मोदी सरकार ने इस योजना पर 8,53,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन मामले का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।